ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सुरक्षा परिषद के आपातकालीन विशेष सत्र में विश्व में शांति रखने की अपील की है। उन्होंने ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमरीकी हमलों के बाद उत्पन्न संकट कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया। श्री गुटेरेश ने जवाबी कार्रवाई और व्यापक युद्ध का खतरा रोकने के लिए तत्काल प्रयास करने का आह्वान किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची वार्ता के लिए रूस के मॉस्को में पहुंच गए हैं। वे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ परामर्श करेंगे। ईरान की संसद ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। होर्मुज जल डमरू मध्य तेल और गैस आपूर्ति के लिए विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग है। ईरानी संसद का यह निर्णय परमाणु केंद्रों पर अमरीकी हमले की जवाबी कार्रवाई है। इस निर्णय से पूरे विश्व में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल के दाम तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार पिछले दो सप्ताह में पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में देश की आपूर्ति व्यवस्था में विविधता लाई गई है और इस समय भारत ईंधन के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य पर ही निर्भर नहीं है।
There is enough oil available in the global markets. More and more oil is coming on the global markets, and even the traditional suppliers would be interested in keeping the supplies on because they also need the revenue. So hopefully the market will factor that in. But as I said, the Modi government has over the past several years not only ensured the stability of supplies but also affordability, and we will take all necessary measures to ensure that.
भारत ने इसराइल से घर लौटने के इच्छुक श्रीलंकाई लोगों के लिए अम्मान से नई दिल्ली की उड़ानों में सीटें देने की पेशकश की है। इसराइल में श्रीलंकाई दूतावास ने इसकी घोषणा की। तल अवीव से अम्मान और दिल्ली के लिए आगे की उड़ान भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। हालांकि यात्रियों को नई दिल्ली से कोलंबो के लिए टिकट की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ईरान के मशहद में कल रात विशेष उड़ान से नई दिल्ली पहुंचे 285 भारतीय नागरिकों की विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने हवाई अड्डे पर अगवानी की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत अब तक 1713 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित लाया जा चुका है।
मोदी जी की बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो उम्मीद नहीं समझ रहे थे कि वापस आएंगे, लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा काम किया जो हम लोग आ गए हैं वापस।
हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा मदद करी है, उन्होंने इवैक्यूएशन में, होटल्स देने में। वी रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स सो मच, और उनकी वजह से इवैक्यूएशन हमारी आसान हो पाई है।
काफी मुश्किल था, हम बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं कि हम भारत देश के निवासी हैं जिसके इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं।
यहाँ आके बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। भारत सरकार, इंडियन एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया है। जय हिंद, जय भारत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की अखंडता को अक्षुण रखने के लिए अतुलनीय साहस और प्रयास का परिचय दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा श्रद्धा के साथ याद किया जाएगा। चार राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना जारी है। गुजरात में विसावदर और कड़ी, केरल की नीलांबूर, पश्चिम बंगाल की कालीगंज और पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट के उपचुनाव के लिए 19 जून को मतदान हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव के बीच आज सुबह भारतीय सूचकांक लाल निशान में खुले। सेंसेक्स 1.02% गिरकर 81,570 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 1.02% गिरकर 24,855 पर कारोबार कर रहा था। शुरुआती कारोबार में एशिया प्रशांत क्षेत्र के शेयर बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई। इस बीच कच्चे तेल की कीमत 2% बढ़कर $79 प्रति बैरल से अधिक हो गई। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, असम और बिहार में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।